आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शरणशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 136वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में मानव की गहरी एवं संतुलित स्वभाव से परिवार व साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। आगे भरतपुर राजस्थान में गोपालगढ़ मोहल्ले में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, एक विवाहित पुत्र तथा साथ में भाई का परिवार। एमकॉम एमबीए करने के उपरांत लड़के का गुड़गांव में जॉब, किसी कंपनी में सहायक अधिकारी पीआरओ के पद पर लग गया था। अच्छा, लड़के की सुविधा के लिए बहू को भी साथ कर दिया गया। वहाँ सेक्टर 85 में सोसाइटी के फ्लैट मिलने लगा, बहू सहित रहने लगा। कार से कार्यालय आना जाना होता था। बहू प्रेमलता हाउसवाइफ होने के कारण दोपहर 11 बजे बाद आस पड़ोस की महिलाओं उसके पास समय बिताने आ जाती तथा नए नए टिप्स पति को वश में करने के बतलाया करती थी। प्रेमलता का पहले से ही बहुत तेज मिजाज था, पति से बार बार पर लड़ने के बहाने ढूंढती रहती, जैसे खाने की तारीफ सुनने की, मैं कैसी लग रही हूँ, कोई कमेंट्स क्यों नहीं दिया आदि आदि। लेकिन पति अमृतलाल बहुत ही शांत व गहरी सोच का व्यक्ति था। वह कहता था, यदि जंग अपनों से हो तो भावना का खेल समझ हार जाना चाहिए। इस संदर्भ में ज़्यादा दिमाग न लगावे, अतः प्रत्युत्तर में वह केवल मुस्कुराकर विषय को बदल दिया करता था। पति अमृतलाल को के शांत स्वभाव के कारण तथा कुछ पति की संगत का प्रभाव प्रेमलता को समय पर ग्लानी होने लगी कि देवता स्वरूप पति के साथ मुझे भी अब अपने नकारात्मक स्वभाव में परिवर्तन लाना ही चाहिए। अतः एक दिन रविवार को प्रातः चाय पीते वक्त पति से विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए आग्रह किया कि चूँकि मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहती हूँ, अतः आप मेरे अंदर कोई 10 बुराइयों को ढूंढकर बतलाएं ताकि मैं भी अपने को सुधारने का प्रयास कर बेहतर पत्नी बन सकूं। पत्नी के मन में बेहतर परिवर्तन के भाव सुनकर अमृतलाल हैरान रह गया, लेकिन असमंजस की स्थिति में पढ़कर उसने सोचा कि मैं आसानी से 10 ऐसी कमियों की सूची थमा सकता हूँ जिनमें सचमुच हमारा सुधार की परम आवश्यकता है। लेकिन तत्काल पत्नी भी ऐसी 100 बातों की सूची थमा सकती है जिसमें मुझे सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि मानव अच्छाई व बुराइयों का मिला जुला पुतला ही तो है। अतः पति ने ऐसा नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इस संदर्भ में सुबह तक का सोचने का मौका दें। पति अगली सुबह जल्दी कार्यालय के लिए निकला। रास्ते में फूल वाले को ऑर्डर दिया कि मेरे घर पर 10 गुलाबों का मनमोहक गुलदस्ता मैं प्रदत्त पत्र के भिजवा देवे। पत्र में लिखा कि गहन चिंतन के उपरांत मुझे तुम में कोई कमी ही महसूस नहीं हो रही है, इसमें तुम्हें सुधार की आवश्यकता हो, अतः तुम जैसी भी हो सब प्रकारेण ईश्वर की श्रेष्ठ कृति हो। आई लाइक लव एंड रेस्पेक्ट यू विद रिगार्ड। उस शाम अमृतलाल जब कार्यालय से लौटा तो देखा कि पत्नी घर की देहली पर खड़ी इंतजार कर रही थी। अश्रुपूर्ण भाव से निपटते हुए जीवन में मिठास कुछ ज़्यादा महसूस करा रही थी। बंधुओं, यथासंभव जीवन में सभी के साथ सराहना करने में कंजूसी न करें तथा आलोचना से बचकर रहने में ही बुद्धिमानी है। अंत में, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। याद रहे, हम सफर क्या चीज़ है ये आखिरी सांस तक समझ नहीं आएगा। ज़िंदगी में गलतियों को इग्नोर करने का हुनर भी आजमाना चाहिए। साथियों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें, लाइक व फॉलो भी करें। धन्यवाद। आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, आज मैं आपके सामने 32वां संस्करण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो ईमानदार, निर्लोभी, अध्यापन कार्य में पूर्ण समर्पित होकर जीवन उपार्जन करते हैं। आगे, सन 1965 की बात है। किसी नगर में लक्ष्मी नारायण नामक अध्यापक एक किराए के साधारण से 2 BHC मकान में रहते थे। सीमित परिवार, पत्नी सुलेखा तथा पुत्र विभू नारायण। अध्यापक महोदय की पहचान पड़ोस व स्कूल में गुरुजी के नाम से थी। बहुत शांतिपूर्ण जीवन यापन चल रहा था, लेकिन उनका पुत्र अधिक ही महत्वाकांक्षी होने के कारण सदैव असंतुष्ट रहता था। गुरुजी का स्वभाव था कि वह ट्यूशन निःशुल्क पढ़ाते थे। चाहे विद्यार्थी कितना ही गरीब अथवा कितना ही अमीर हो, तथा पढ़ाई में गलतियों पर मारते भी बहुत थे। सीमित आय होने से परिवार को अतिरिक्त सुविधा मुहैया नहीं करा पाने से उनका पुत्र हमेशा पिता से आर्थिक विषय लेकर नोकझोंक करता रहता था। लेकिन गुरुजी का कहना था कि मानव सेवा धन से न सही विद्या दान देकर प्रदान की जा सकती है। अतः इसी बहाने जीवन में कुछ तो सद्कर्म अर्जित करूं। इसी तरह अतिरिक्त सुविधाओं से रिक्त जीवन जीते हुए पुत्र का कुंठित मन हो गया। जैसे तैसे CA का कोर्स करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर फाइनेंस के पद पर कार्य करने लगा। पिता से मतभेद होने से आए दिन हर कार्य में विरोध दर्ज कराता था। यद्यपि उसकी माँ सुलेखा दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का भरसक प्रयत्न करती रहती थी। लक्ष्मी नारायण रिटायर्ड होकर भी घर पर निःशुल्क ट्यूशन अभी भी पढ़ाते रहते थे। एक दिन उनका पुत्र तुनक कर खाने के टिफिन के बिना ही अपने ऑफिस चला गया। माँ सुलेखा को जब पता लगा तो वह बहुत चिंतित हुई तथा पति से बोली कि ट्यूशन के बाद साइकिल से विभू नारायण का टिफिन दे आना, अन्यथा आज वो गुस्सा में भूखा ही रह जाएगा। गुरुजी ट्यूशन करीब 12:30 बजे दोपहर को समाप्त कर अपनी साइकिल द्वारा बेटे की कंपनी में टिफिन देने चली गई। कंपनी घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर थी। साइकिल से टिफिन लेकर कंपनी के गेट पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को रजिस्टर में नियमित एंट्री भरवाने के बाद गार्ड ने बताया कि चूँकि अंदर एमडी साहब अधिकारियों के साथ ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, अतः संबंधित व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो सकती। आप गुरुजी वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे। आधे घंटे बाद मीटिंग की समाप्ति पर सब लोग मीटिंग हॉल से बाहर निकले तो विभिन्न नारायण की निगाह गेट पर बैठे पिताजी पर पड़ी, जो साधारण से कपड़े पहने बेंच पर बैठे दिखे। विभिन्न नारायण चिंता में पड़ गया कि कहीं एमडी साहब की निगाह पिताजी पर न पड़ जाए, क्योंकि एमडी साहब बहुत गुस्सेल व अनुशासित स्वभाव के थे। लेकिन एमडी साहब सीधे अपने बीएमडब्ल्यू की ओर चले गए। जैसे ही ड्राइवर ने कार का गेट उनके बैठने के लिए खोला ही था कि एमडी साहब की दृष्टि गेट पर बैठे गुरुजी पर पड़ गई, जिन्हें देखकर एमडी साहब पुनः गेट की ओर लौट गए तथा गुरुजी के पास जाकर बोले, आप गुरुजी ही हैं ना। हाँ कहने पर उनकी चरण स्पर्श करते हुए बोले, मैं आपका शिष्य दिव्यांकर। तथा एमडी साहब गार्ड को डांट कर बोले, इन्हें यहाँ क्यों बिठा रखा है? और गुरुजी के को आदर सहित अपने निजी चैम्बर में ले गए। चैम्बर में जाकर गुरुजी को अपनी सीट पर अग्रभूमि बिठा कर स्वयं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे तथा कहा कि गुरुजी, आज जो कुछ भी मेरे पास है सब आपकी कृपा का फल है, नहीं तो स्कूल के जमाने में अमीर बाप का आवारा स्वच्छ जिद्दी पुत्र था, लेकिन आपकी कृपा से आज मैं जानवर से मेहनती ईमानदार अच्छे उद्योगपतियों में गिना जाता हूँ। आपके एहसानों का मूल मैं इस जन्म में तो नहीं ही चुका सकता। बाद में गुरुजी बाबत जानकारी हासिल की, फिर पूछा, गुरुजी बेबू की शादी हो गई क्या? गुरुजी ने जब बताया कि सगाई तो कर दी है, विवाह की तिथि तभी तय होगी जब हम कोई मकान खरीद लेंगे, ऐसा बेबू की शर्त है। सुनकर एमडी साहब ने कहा कि मकान की प्रॉब्लम तो अभी दूर हो जाएगी, मेरी एक कोठी शहर के बाहर बंद पड़ी हुई है, कोठी व्यवस्थापक को फ़ोन द्वारा सूचित किए देता हूँ, कोठी की साफ सफाई के उपरांत चाबी आपको 2 दिन बाद सौंप जाएगा। अब शादी की तारीख शीघ्र तय कर लेवे, उसका भी इंतजाम अभी हो जाएगा। अतः अपने मित्र राजेंद्र मेघवाल को तुरंत फ़ोन लगाकर बताया कि राजेंद्र, स्कूल टाइम में गुरुजी थे जिनकी मार से मैं और तू जानवर की योनि से इंसान की योनि में ला दिया था। राजेंद्र ने पत्र में कहा कि वह तो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, कहो क्या सेवा है? तब एमडी साहब बोले, गुरुजी से आकर शीघ्र निम्न पते पर जो मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ मिलना, तथा उनके निर्देशानुसार उनके बेटे की शादी का सारा इंतजाम अपने 5-स्टार होटल में अपनी ओर से व्यवस्था करनी है। अब गुरुजी के एहसानों का बदला चुकाने का सुनहरी मौका मत गवा देना। सुनकर राजेंद्र ने अपनी ओर से पूर्ण सहयोग ले तन मन धन से करने की स्वीकृति प्रदान की। तदुपरांत एमडी साहब ने अपना निजी फ़ोन नंबर गुरुजी को देकर कहा कि कभी भी मेरे योग्य सेवा हो तो हमेशा आपके एक फ़ोन पर खड़ा मिलूँगा। गुरुजी को गेट तक छोड़ने व पुनः चरण स्पर्श करने के बाद एमडी साहब रवाना हुए। घर आकर बेटे ने माँ को सारा घटित वृतांत बतलाया तथा पिता के चरणों में बैठकर सजल नेत्रों से क्षमा याचना की तथा बोला, आज मुझे आपके समर्पित शिक्षक होने पर गर्व महसूस हो रहा है। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स देकर अपने मोहर लगाएं तथा सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में और नई ऊर्जा के साथ बहुत से अनुभव कहानी के माध्यम से सेवा में समर्पित कर सकूं। धन्यवाद।